पूजा ये वैश्विक रखा। यह घटना इमली तला में हुई थी, इसलिए राधा जी के समान ही कृष्ण वहां पर गोरे रंग के बने। पहला वैशिष्ट। दूसरा वैशिष्ट, उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति अपने समिति का नाम रखा। बहुत से लोग कहते हैं कि गौड़ीय वेदांत समिति क्यों, ये तो ज्ञान मार्गियों का है। गुरु जी ने कहा कि नहीं, गौड़ीय वेदांत कहने से भक्ति का विचार मालूम होता है। बलदेव विद्याभूषण ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जीव गोस्वामी ने इसको प्रमाणित किया है। गौड़ीय वेदांत माने क्या है? अनावृत्ति शब्द, अनावृत्ति शब्द, शब्द माने भगवान नाम कीर्तन के द्वारा ही ये भव सागर को आदमी पार कर जाता है, फिर उसको जगत में नहीं आना पड़ता। इसलिए गौड़ीय वेदांत भी भागवत है। इसलिए भागवत के अनुसार में जो भागवत को मानने वाले हैं उनको कहते हैं गौड़ीय वेदांत समिति। इसीलिए उन्होंने बतलाया पूज्य बाद मान महाराज जी को, त्रिविक्रम महाराज जी को, और हमको गुरु जी ने पहला संन्यास दिया तो हमारा नाम भी रख दिया भक्ति वेदांत बामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज और सबको गौड़ीय वेदांत भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत। अभी तक हम लोगों की धारा बामन महाराज जी भी या हम लोग भी दे रहे हैं तो उसमें गौड़ीय वेदांत समिति के अंतर्गत जितने भी सन्यासी हो रहे हैं वो सभी भक्ति वेदांत, इसलिए वो धारा अभी तक चली जाएगी। अब बहुत से लोगों ने इसका प्रतिवाद किया किंतु गुरु महाराज ने किसी के नहीं सुना, ऐसे वो ग्रंथक व्यक्ति थे। अब सभी लोग वैसा ही करने लगे इधर से उधर से, किंतु उसी धारा लेने के लिए बाध्य तो कोई समझेगा नहीं। इसलिए हम लोगों के गौड़ीय वेदांत समिति में जो कोई संन्यास लेगा, सन्यासी का नाम सुनते ही हम लोग समझ जाएंगे यहाँ ये हमारे संप्रदाय। अब बल महाराज ने भी आरंभ किया है किंतु वो दूसरे रूप। अभी स्कूल में जो दिया जा रहा है वो शास्त्रीय पद्धति से नहीं, वो शास्त्रीय पद्धति के बाहर, वो सन्यास ठीक नहीं जा रहा। उसमें 108 नाम है जो उपनिषदों में दिए गए हैं। एक तो दस नामी सन्यासी का नाम होता है और 108 वैष्णव में होता है। रामानुज ने, मध्वाचार्य ने अपने संप्रदाय में इसको ग्रहण किया, दस नामी को काट करके 108 वाला जो वैष्णव नाम का है वो वेदों से लेकर के, जिसमें दस नामी वाले तो ही हैं, इसके अतिरिक्त उसमें माधव, गोविंद, नारायण, बामन, कुर्मा इत्यादि बहुत से नाम हैं। मधुसूदन, ये सुंदर सुंदर नाम, उसमें कोई उपाधि लगाई जाती, जैसे भक्ति कमल मधुसूदन, भक्ति प्रज्ञान केशव, भक्ति वेदांत बामन। वैसे स्वामी जी का नाम भी गुरु जी ने उनके रखा था, हम लोग के गुरु जी ने, भक्ति वेदांत स्वामी। किंतु यदि इसको नहीं धारण किया जाता है अंत शब्द जो कोई भी नाम आया और रख दिया वो संन्यास ठीक नहीं, इसलिए वो लाइन ऑफ धारा में होनी चाहिए, अन्यथा वो सन्यासी सिद्ध नहीं है, वो शास्त्र बनी हुई है। इसलिए गुरु महाराज जी के ये सब वशिष्ट। गुरु महाराज जी ने नवद्वीप में मंदिर बनाया ये बतला रहे, नौ चूड़ा बनाया, बीच वाला आत्मनिवेदन, और आरम्भ किया श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास साक्षात बंधन, ये नौ उसकी चुड़ाई थी। नवद्वीप में हमारे उन्होंने बहुत से खंड बनाए नवद्वीप मंदिर में। दक्षिण की तरफ में ज्ञान खंड, देखो पीछे की तरफ में पीठ मत करो, बोलो राधा विनोद तिहारी, जय हो गिरिराज धरने की। दर्शन किया, तुम लोग दर्शन करो, इतना सुंदर ज्ञाति है। आज इन लोगों ने ही ड्रेस पहनाया, तो इस तरह से गुरु जी के बहुत से वैशिष्ट हैं। एकांत जहाँ पर कीर्तन होता है उसका नाम सब कीर्तन खंड, और जहाँ पर मंदिर है वो उपास्य खंड, जहाँ सेवक लोग रहते हैं उसका सेवक खंड नाम। जहाँ पर गायें थी तो गायों का इसको कहते हैं गोवर्धन खंड। यहाँ रामना इत्यादि है उसका कोई एक नाम दिया। और दक्षिण दिशा में हम लोगों का टट्टी बना हुआ है पैखाना, उसको राखा ज्ञान खंड, ज्ञान खंड पैखाना के जगह को कहते हैं। जो वैष्णव लोग जिसको त्याग कर देते हैं वो ज्ञान खंड है, मुक्ति ये ज्ञान का खंड। इस तरह से चारों तरफ में प्रचार किया। केवल यही नहीं, इन्होंने बतलाया, एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था वैष्णव विजय और अथवा मायावाद, मायावाद की जीवनी। उसमें उन्होंने दिखलाया जो आज तक कोई भी वैष्णव मायावाद नहीं लिया ग्रह, जो हरिनाम में दीक्षित है, भगवान नाम मंत्र में, गोपाल मंत्र इत्यादि गौर मंत्र में जो दीक्षित है, आज तक कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो कोई आदमी वैष्णव धर्म को छोड़ करके अद्वैतवाद ग्रहण किया। किंतु इसके लाखों प्रमाण हैं कि जिन लोगों ने मायावाद ग्रहण किया अद्वैतवाद, उसको छोड़ करके फिर वैष्णव धर्म में आया, इसलिए वैष्णव धर्म से। इस तरह से उस ग्रंथ को लिखा, उसका जवाब देने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, इतने युक्ति और प्रमाण के साथ में लिख रहा है। इसकी जब हम बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए संक्षेप में बढ़ते हुए चले जाए। इस तरह से गुरु महाराज जी का जो वैशिष्ट्य है इसको उन्होंने बताया। आप कौन बोलेगा? आप लोगों ने अभी तक विभिन्न रूप से गुरु जी की महिमा और गुरु तत्व के संबंध में सुन लिया। हमें ठाकुर जी का भोग लगने जा रहा है और इधर में हम लोग का भी अर्चन और पुष्पांजलि भी बाकी है। मैंने सवेरे कुछ बताया था, शाम को भी 5 बजे से लेकर उधर में 7 बजे तक हरी कथा होगी, फिर रात में भी होगी। इसलिए हम लोग उस समय में अधिक बोलेंगे। अभी संक्षेप में मैं दो एक बातें बतलाना चाहता हूँ। मैं संक्षेप में दो एक बातें बतलाना चाहता हूँ। आज गुरु महाराज जी का नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव माने होता है अप्रकट, अप्रकट माने इस धाम को छोड़ करके चला जाना। गुरु जी या संसार में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हम लोग दुख मानते हैं, बहुत दुखित होते हैं, उसके लिए रोते चिल्लाते हैं। अलग हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। कितनो वैष्णव साहित्य में विरह महामहोत्सव कहा गया, यह है विरह महामहोत्सव। महोत्सव कहते हैं आनंद जब उमड़ पड़ता है तो उसको उत्सव कहते हैं। हृदय में आनंद उच्छलित हो उठे तब वो है उत्सव। आज के दिन में आनंद उच्छलित होने का क्या बात है? जो सच्चे शिष्य होंगे, यथार्थ में जो शिष्य होंगे, आज के विरह के दिन में गुरु जी का जीवन चरित्र जितना है सब उनके स्मृति पट पर हृदय में वो स्फूर्ति प्राप्त होगी। जितना उनका जीवन चरित्र है, इसलिए उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, अपने गुरु जी का मनोभीष्ट कैसे पूर्ति किया, पूर्ण किया, कैसे उन्होंने भगवान की सेवा की, जगत का उन्होंने क्या कल्याण किया, ये सब चीज़ों की स्फूर्ति हृदय में होती है पूर्ण रूप से। इसलिए इसका नाम है विरह। विरह माने विशेष रूप से
रह तत्व जो बाहर की जो चीजें हैं वो अंतर में रहना, इसलिए इसका नाम है विरह। आज विशेष रूप से उनके साथ में मिलन अर्थात कथाओं के माध्यम से उनसे मिलन, उनके जीवन चरित्र के सभी कुछ का स्मरण होना, यह विरह महामहोत्सव है। यदि आज के दिन हम उनके जीवन के चरित्र का स्मरण करके और भगवत भक्ति की बातें अपने जीवन में स्मरण कर सकें और उन आदर्शों को हम यदि गुरु जी के ग्रहण कर सकें तो ये सबसे बड़ी पुष्पांजलि होगी। हम लोगों को यह बात समझनी चाहिए, बिन गुरु भव निधि तरै न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी यदि कोई हो, बिना गुरु के भव निधि को तरा नहीं जा सकता। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए, विदाउट गुरु वी कैनॉट क्रॉस दिस वर्ल्ड एंड वी कैनॉट हैव may not be have any kinds of peace, a very little peace also. Amra bujhte parbo na bina gurudever ashray kare charnashray bhor sagar se to bhor sagar par kara bahut durer kotha bhagwaner pat padmai tyadi labh hoba bhari kathin jo log guru seva nahi karte guru pad ashray nahi karte un logo ko kabhi bhi sukh aur shanti भौर सागर पार करना और कृष्ण के चरणों को पाना ये कभी संभव पर नहीं है। हम लोग कभी कभी गुरु सेवा को गलत रूप में समझ लेते हैं। आजकल बहुत से लोग गुरु कर्ण को दीक्षा इत्यादि को बेकार समझते हैं। अधिकांश लोग आजकल विशेष करके आज की शिक्षा आधुनिक जो शिक्षा है बेकार समझते हैं। कुछ लोग जो बेकार नहीं समझते, जो कर्मी हैं वो लोग जिनको बेटा नहीं होता, पुत्र नहीं होता, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है और संसार में दुख है, ऐसे कर्मी लोग स्त्रियां और पुरुष धन के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, संसार में सुखी होने के लिए गुरु कर्ण करते हैं। ये लोग सभी कर्मी हैं, इनका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। इसी के अंतर्गत में एकलव्य है। आजकल एकलव्य की चारों तरफ में खूब प्रतिष्ठा चल रही है, एकलव्य समाज गठन हो रहा है, एकलव्य की पूजा हो रही है। एक यदि गुरु हो तो कैसा, शिष्य हो तो कैसा, एकलव्य जैसा। कैसा, गुरु जी ने कहा जी अंगूठा दे दो तो काट करके दे दिया। ये कर्मी गुरु, ये गुरु किया ही नहीं इसने। गुरु जी ने कहा तुम वैष्णव का द्रोह करते हो, भगवान का तुम द्रोह करते हो। गुरु किया जाता है आत्मा के ज्ञान के लिए और भगवान की सेवा की प्राप्ति के लिए, और तुम अर्जुन को जो भक्त है हमारा सबसे, और उसको नीचा दिखलाने के लिए, उसे जान से मारने के लिए और हमारा विरोध करने के लिए तुम धनुष बाण की शिक्षा की है। कौरव और पांडव में युद्ध होगा, मैं कौरवों की तरफ से लड़ करके कृष्ण को, अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, उसके लड़के को मारूंगा। ये भक्ति है, ये गुरु का करने का क्या जरूरत है, ये कर्मी है। आजकल संसार के अधिकांश लोग 99% लोग इसलिए गुरु करते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, कर्ण ने भी गुरु किया, किसको, परशुराम को, किस लिए, अर्जुन को नीचा दिखलाने के लिए। इसलिए परशुराम ब्राह्मण के पास में गया और उन्होंने कहा जी हमको आप अस्त्र शस्त्र की और धर्म की शिक्षा दें। उन्होंने कहा जी तुम्हारे पिताजी कौन हैं, एक ब्राह्मण का नाम बतला दिया। ठीक, ब्राह्मण का लड़का आता, हाँ ब्राह्मण का लड़का, पहले ही गुरुजी से झूठ बोला। उसने सोचा जी गुरुजी को पता नहीं होगा, मैं उनसे कपट करके छल करके और उनका सब कुछ ले लूंगा। आजकल समाज में ऐसे ही छली कपटी धूर्त बदमाश व्यभिचारी लोग भरे पड़े हैं जो गुरु के पास में जा करके अपने लिए, इन सुख शांति और सांसारिक भोगों के लिए गुरु जी को झूठ बोल करके, गुरु और वैष्णव का नाम कर कपटता रखते हैं, वो समझते गुरु क्या समझेगा। इसलिए परशुराम जी को ठक करके काज में ब्राह्मण का बेटा हूं, हमको आप मंत्र तंत्र और दीक्षा दी। समझ गए वो कैसे थे, भगवान के आवेश अवतार हैं, साधारण नहीं है, ब्राह्मण तो है ही हैं। समस्त पृथ्वी के दंड क्षत्रियों को, भगवत विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया है 21 बार, एक दो बार नहीं। इसने सोचा कि उनको हम छल करके ठग लें, कहा अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, अच्छा कुछ दिन तो हमारी सेवा तो कर ले, इसके बाद में देखा जाए। ठीक, धनुष बाण सब उसको बतलाया, बतलाने के बाद में कहा अच्छा तुम हमको मूर्ख समझता है, कहते जी हमारी कपटता को आप नहीं समझ सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन दिन में ही एक पेड़ के नीचे सो गए और कर्ण का गोदी में सो गए और अपनी माया से एक कीड़ा निकाला, लाल कीड़ा वज्र कीट उसे कहते हैं, और ऊपर से उसने छेद करना आरंभ किया, नीचे तक छेद कर दिया और उसे रक्त की धारा निकली और वही परशुराम जी के सिर में लगा। अरे ये क्या निकल गया, देखा जरा रक्त कहाँ से आया, कर्ण की तरफ में देखा, देखा जैसे अरे रक्त कहाँ से आया, अरे तुम्हारे जंघे से रक्त आ रहा है, क्यों, एक कीड़े ने छेद कर दिया। अरे तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है, वो तो हमें जगा देता, ब्राह्मण होता तो निश्चित तुम्हें, तुम धूर कपटी है, तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तुम कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, बतलाओ अभी, नहीं तो अभी संपात देता हूँ, तुम कौन है। तो उसने कहा जे मैं क्षत्रिय हूँ, एक शूद्र का सारथी का लड़का हूँ, अपनी कुंती मैया का नाम नहीं बतलाया, क्या बतलाया, कुंती मैया का नाम नहीं बतलाया, बतलाया जे मैं कौन सूरत ना क्या क्या नाम राधे उसका मैं लड़का हूँ, मैं सारथी का काम करने वाले की जाति में हूँ, हमको पहले नहीं बतलाया, जाओ तुमको अभी तक जो शिक्षा दी वो क्या हो जाए, हो जाए। अब ये तुम्हारा ब्रह्म शास्त्र ब्रह्मास्त्र और ये जितने बड़े बड़े जो हम तुमको ये दिया है और भक्ति की बात बताए, जरा तुम भूल जाएगा समय आने पर। बस अर्जुन के साथ में युद्ध होने लगा, उसको कोई वाणी नहीं संचलित हुआ, धनुष भी नहीं उठ सका और वो मारा गया। ऐसे कपटी धूर्ते ये सब गुरु शिष्य नहीं है, गुरु की मनो की अभिलाषा पूर्ण करनी, ये गुरु का तात्पर्य है। कैसा, अरुणी जी गए गुरु के पास में, उपाधम्य या क्या नाम था मुझे याद नहीं, आयुधम्य वो गए। गुरु जी ने कहा जाओ अभी तुमको शिक्षा दीक्षा पीछे देंगे, अभी खेत के मेड़ बांधा और रात में माघ के महीने में कहा जाओ बांधो। वो मेड़ बांधने गया, इतनी पानी जे पानी मेड़ नहीं बन सका, तो उन्होंने कहा जी सब क्या करूं, रात हो गई, बांधते 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 जो मिट्टी उसमें डालता है वो बह जाती है। उसने कहा जी अच्छी बात है, तब गुरु सेवा के लिए शरीर किस काम का, बस वहीं अपने आप लेट गए और ठंडे पानी में शरीर एकदम जम गया, किंतु हटे नहीं। सवेरा हुआ, अरे अरुणी तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ, अरुणी किसे बोली नहीं निकल रही। बड़े क्षीण शब्द में उन्होंने कहा गुरुजी मैं यहाँ हूँ, यहाँ क्या कर रहा। जा करके देखा मेड़ के बदले खुद ही वहाँ पर सोया, जाओ इधर आओ इधर आओ, आकर के उसके सिर पर हाथ रख, वेद वेदांत की सारी चीजें तुमको ठीक हो जाए, स्फूर्ति हो जाए। अरुण एक बहुत बड़ा महात्मा ये बना। वेदों का शास्त्र, वेद में क्या चीज है, वेद में निर्विशेष ब्रह्म की बात है, मुक्ति की बात है, और कर्म कांड में यज्ञ करके चतुर्मास इत्यादि के द्वारा और उनका पूजा करके स्वर्ग में जाएं, बस उनको स्वर्ग या अधिक से अधिक मुक्ति की बात हुई, आगे नहीं गए। इन्होंने गुरु का मनोभीष्ट क्या पूर्ण किया, उसी का प्रचार किया। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़िए स्तर में, जो गुरु के मनोभीष्ट को कैसे पूर्ति करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे तो देखेंगे हम कृष्ण और सुदामा को देखते हैं। ये लोग गुरुगृह में गए सुदामा के उनके यहाँ, संदीपनी मुनि के यहाँ। गुरुवाणी ने कह दिया जब ही जरा लकड़ी गिली है, वर्षा होने वाली है, जरा लकड़ी ले आना। तो गुरुवाणी की बात मान करके चले गए जंगल में और वहां से लकड़ी लाने के लिए गए। रात में घना घोर वृष्टि हुई, कहां कितना पानी भर गया कोई ठिकाना नहीं। रात भर एक पेड़ के नीचे सिर पर वही लेकर के अपना गठरी लकड़ियों की और खड़े रहे। सवेरे में अरे गुरुजी आते हुए बोलते हैं, अरे कृष्ण कहाँ है, सुदामा कहाँ है। देखा जैसे ये तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, खड़े हैं और गठरी रात भर लिया जी ये लकड़ी भीजने जाए। गुरुजी बस झट प्रसन्न हो गए, अप्रसन्न होकर के सारी कलाएं एक मिनट में नहीं लगा 64 कलाएं विद्याएं और क्या क्या चीजें उनको दी। उनके सेवक जो थे कृष्ण, कृष्ण ने क्या किया, गुरु के मनोभीष्ट को कैसे पूरा किया। जगत भर में कृष्ण भक्ति प्रदान की। सुदामा जी भी वैसे ही, और थोड़ा सा आगे बढ़िए, गुरु के मनोभीष्ट को कैसे पूरा किया जाता है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदांतिकम्। रघुनाथ दास गोस्वामी थे, संक्षेप में बतला रहे थे, इसके बीच में बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत से हजारों, किंतु उसके बीच में बतला रहा हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। यहां आप एक चीज समझ लीजिए, हमारे गुरु जी ने लिखा है एक जगह प्रथम वर्ष के गौड़ीय के प्रथम संख्या में बलदेव विद्याभूषण के जीवन चरित्र में उनकी गुरु परंपरा के विचार की धारा में बतलाया। क्या बतलाया, गुरु परंपरा की दो धाराएं होती हैं, एक का नाम है गुरु परंपरा या शिष्य परंपरा और दूसरी का नाम है भागवत परंपरा। आजकल जो अभी चल रहा है इसमें प्राय 99% रेकरिंग ये शिष्य परंपरा चल रही है, भागवत परंपरा नहीं अधिकांश रूप में। प्रभुपाद जी ने इसका उल्लेख किया और भागवत परंपरा उन्होंने दी। क्या भागवत परंपरा दी, कृष्ण, कृष्ण के प्रकाश नारायण, नारायण से हुए कौन, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को कृष्ण ने या नारायण जी ने कब दीक्षा दी, ये कौन परंपरा है, मन में ही आविर्भूत होकर के हृदय में और उनको दीक्षा दी। क्या दीक्षा दी, हमने सुना है ब्रह्म संहिता इत्यादि को पढ़ने से, खूब अध्ययन करने से गंभीर रूप में मिलेगा कि उन्होंने ब्रह्मा को, कृष्ण ने अपनी किससे, जोग माया से या किससे, पहले गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। गोपाल मंत्र, गोपाल मंत्र की दीक्षा दी, वो गोपाल मंत्र के द्वारा उनमें सृजन शक्ति आई और विश्व का सृजन किया। भगवान के प्रेम को पाने के लिए इसका व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो चीज मिली नहीं, उनको मिली शक्ति। क्या चीज मिली, शक्ति। तो जो लोग ये गोपाल मंत्र, कामगायत्री इत्यादि मंत्रों का उपयोग दुख दूर करने के लिए ये करते हैं ना, तो उनको क्या मिलता है, वही दुख दूर हो जाता है। यदि कोई मुक्ति पाना चाहता है तो मुक्ति मिल जाती, यदि कोई हरे कृष्ण नाम करता है, कहते यो धन मिल जाए, धन मिल जाए, हरे कृष्ण धन मिल जाए, धन मिल जाए। किसी की शादी नहीं होती, हरे कृष्ण हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी नहीं हो रही, बहुत विलंब हो रहा। इसी तरह से जो कोई कामना करेगा ये मंत्र जप के साथ में, वो गोपाल मंत्र भी और ये भी, तो वो सब कुछ देने में समर्थ है। इसलिए नहीं देंगे, कब देंगे, शुद्ध गुरु के पदाश्रय में यदि वह नाम मिलेगा और एकमात्र उस प्रेम के लिए ही यदि किया जाए तो वो प्रेम फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण। एक ही गुरु से दोनों आदमी ने दीक्षा ली, मंत्र लिया, और एक आदमी कृष्ण प्रेम को पा लिया और दूसरा नहीं पाया, क्यों, शुद्ध संग नहीं किया, उसकी हृदय की आकांक्षा नहीं, गुरु जी के ठीक मनोभीष्ट को नहीं समझ सका, इसलिए नहीं हुआ। वो ऊपर झापर में इधर उधर नाचता कूदता हुआ किसी प्रकार से एक धार्मिक जीवन बनाने का ढोंग किया, इसलिए ब्रह्मा जी को वो चीज नहीं मिली। कृष्ण ने देखा जे ये मेरी चीज को पाया नहीं, तब फिर उन्होंने क्या किया, उनको काम गायत्री का मंत्र दिया, अपनी बंसी के ध्वनि से दिया। उसमें पीठ किसको कहते हैं, क्या जोग पीठ, उस मंत्र का मुख्य स्थान क्या है, उसके कमल के जो पखुड़ियां हैं वो क्या चीजें हैं, उसका बाहरी स्थान क्या है, उसका सब उसमें वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी उसका भी प्रयोग नहीं कर सके, थोड़ा सा प्रयोग कर सके, इसलिए दास भक्ति तक पहुंच सके। जानन्ते यो जानन्तु नामे बहुत, गोपियों की चरण की धूली बहुत दूर से उन्होंने प्रार्थना थोड़ी सी की, क्या की गोपियों की चरण धूली के लिए प्रार्थना, जल्दी बोलो क्या है, वही वही बोलो, नहीं इसके बात कर, बैठ बेटा जल्दी बोलो जल्दी, मेरा ब्रज में कहीं भी जन्म हो जाए, तदभूरी भाग्यमी जन्म किमप्पटव्यम जज गोकुलेपी कतमांग रजो विषेका जज जीवितं निखिल भगवान मुकुंद तद्याद जत पदरजा। ब्रज में कोई भी हो, किसी का भी एक चरण की धूली पाने के लिए मैं ब्रज में जन्म करूं, कहे नहीं 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 ब्रज में मेरा जन्म नहीं हो, ऐसा मैंने कोई कार्य ही नहीं किया, ऐसी कोई भक्ति नहीं की, इसलिए ब्रज में मेरा जन्म संभव पर नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं गोकुले भी, अरे गोकुल में भी, यहां तक कि गोकुल में भी उन्होंने सोचा जी हमारा जन्म तो कुछ होगा नहीं, कृष्ण की लीला में मैंने बाधा दी, बछड़ों को और सखाओं को हरण मैंने कर लिया, नहीं मेरे लिए संभव। कृष्ण कह रहे हमारी भजन, हमारा भजन क्यों कर रहा है, हमारी प्रार्थना, मैं जूठा छूठा खाता हूँ सब समय में, ऐसा ही अपवित्र रहता हूँ, गोचारण जैसा छोटा सा काम करता हूँ, सखाओं का भी जूठा खाता हूँ, घर घर में जूठी चू चोरी करके खाता हूँ दूध और मक्खन, तू ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण चारों मुख से वेद का उच्चारण करता है, फिर हमारी कृपा की तुमको क्या जरूरत है। नहीं प्रभु अब हमको मत ठगिए, अब मैं समझ गया, इसलिए ब्रज में कोई भी हो उसके चरण की धूली की प्रार्थना करता हूँ। काजे क्या जन्म चाहता है, प्रभु अब मैं पहले तो सोचता था जे गोप गोपी हो जाऊँ, अब नहीं, अब तो मैं एक पत्थर होकर के गोकुल में भी जन्म लेना चाहता हूँ, जिस पर पैखाना कमाने वाली, टट्टियाँ को बटोरने वाली, फेंकने वाली जो जमादारनियाँ होती हैं नीच कुल की, वो भी जब टट्टी कमा करके आए और उनके पैरों में यदि मैला लगा हुआ है तो आ करके पानी से रगड़े हमारे ऊपर में, तो वो उसकी चरण धूली हमारे ऊपर में पड़ जाए, मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। जिनके चरणों की धूली को आज वेद शास्त्र समूह कोटि कोटि वर्षों तक कल्पों तक आराधना करके भी नहीं पा सके, आज मैं यही अकेल मात्र भिक्षा, कृष्ण उनके तरफ में देखा नहीं, एक सखा के ऊपर में अपना ये रख करके हाथ और एक कमल का फूल नचाते हुए उसमें उधर देखने लगे और बच्चे ताली बजा करके चौमा 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 चौमा, वो चौमा अभी वर्तमान है। नारद जी वहां से ब्रह्मा जी चले, कृष्ण प्रेम का गोपियों का प्रेम मिलना ये बड़ा भारी कठिन है, उन्होंने केवल यही कहा कि किसी भी ब्रजवासी के चरण की धूली मिल जाए, किंतु इनसे बहुत ऊपर वाले जो हैं जिनके गुरु कौन हैं, गोपियां दीक्षा ली किंतु उनकी सेवा नहीं कर सके, ऐसे उद्धव जी दीक्षा लेने के लिए गए किंतु आभास उनको मिला, उन्होंने प्रार्थना की आसाम हो वृंदावने किमप गुलमलासौ से जह दुस्तजंग स्वजन आर्य पथंच हित्वा भेजे मुकुंद पदमेम सुतभि मृमिज्ञान। इन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कोई भी एक ब्रजवासी ब्रज का रहने वाला उसकी चरण धूली, और उद्धव जी गोपियों की महिमा समझ करके कृष्ण ने कहा जाओ जाओ हमारी पाठशाला में पढ़ो, हमने बचपन में जहाँ पर पाठशाला में सीखी उसी पाठशाला में चले जाओ, वहाँ की हेड अध्यापिका कौन है, ललिता जी है, दूसरी कौन है सहकारी अध्यापिका प्रधान अध्यापिका विशाखा, इनसे जा करके सीखो, इनके भी जाने लायक योग्य नहीं, तुम उनकी जो दासियों के दासियों की दासियों की अनुदासियों की चरण की जो किंग करी हैं उन रूप मंजरी प्रभृति सखियों की जो दासियां हैं उनके चरणों में जाओ भी सीखो, उनको कुछ सिखलाया। जब उनकी महिमा का ज्ञान हुआ, उस महिमा को तो प्राप्त न कर सके, किंतु उन्होंने वंदना जरूर की। जिन गोपियों ने अपना सर्वस्व सब कुछ, भाई बंधु पति यहाँ तक, लोक लज्जा धर्म वेद धर्म कुल धर्म लज्जा तक कभी छोड़ करके कृष्ण को अपने मुट्ठी में बना दिया, जैसा चाहती थी वैसा न चाहती थी कृष्ण को, और उनको मनाने के लिए, देखिए जो राधा जी को मनाने के लिए कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं, वो क्या है, मम शिरसि मंडनम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवंकारम। और राधा जी कहते नहीं, हट जाओ यहाँ से, चलो चलो यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसे उद्धव जी अंत में उन्होंने प्रार्थना की, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम अभिक्षस जासां हरि कथोद्गीत भुवा पुनाति भुवन त्रयम्। ऐसी प्रार्थना की, ना? क्या प्रार्थना की, उन सब में जो श्रेष्ठ गोपी है उसके चरण की एक धूल भी हमारे सिर पर आ जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। किंतु उनको भी, उनकी इस भी प्रार्थना को, अभीष्ट को भी मात कर दिया किसने, हमारे रूप मंजरी की, रूप गोस्वामी के एक किंकर ने। कौन किंकर? रघुनाथ दास गोस्वामी। बस यही कह करके मैं समाप्त करूंगा। गुरु बतलाने एक परंपरा वाली भागवत परंपरा, और एक बतलाया शिष्य परंपरा। अभी तक जो कर रहा था, बतला रहा था, वो प्राय उद्धव जी के पहले जो कहा वो शिष्य परंपरा थी, और उद्धव जी का जब आया ये हुआ कौन से परंपरा, ये भागवत परंपरा। भागवत परंपरा में कान फूंकने की जरूरत नहीं होती, हृदय में स्फूर्ति करार देने की होती है। उस भागवत परंपरा के अंतर्गत में ही ये शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा क्रोड़ीभूत है। क्रोड़ीभूत माने क्या, उसी के अंतर्गत है। भागवत परंपरा के अंतर्गत में ये गुरु परंपरा है। भागवत परंपरा क्या, प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह मौलिक एक वैशिष्ट है, मौलिक, जो आज तक किसी ने नहीं देख लाया। वो मौलिक उपदेश क्या है, वैशिष्ट क्या है, भागवत परंपरा का प्रकाश करना। ब्रह्मा जी कृष्ण से डायरेक्ट नई दीक्षा हरि नाम लिया, तो अभी ये भागवत परंपरा में है। उनको उनकी सखियों ने, बंशी ने उनको ये मंत्र दिए, इसलिए ये भागवत परंपरा में है। मंत्र देना माने उनको सारी शिक्षाएं दी। उद्धव भी इसी परंपरा में है, किंतु ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी को उन्होंने कब दीक्षा दी, उनके विचारों को आचारों को उन्होंने ग्रहण किया। नारद जी ने व्यास जी को कब दीक्षा दी थी, अरे उनकी तो एक तरह से दीक्षा देने वाले कौन हैं, सनक सनंदन जी हैं। बालकपन में जबकि चातुर्मास्य के व्रत में उनको मंत्र कौन दिया था, और वो भी कौन सा मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रज से इसका कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए नारद जी को जहाँ से, नारद जी को कहाँ से ये सब शिक्षा मिली, ब्रह्मा जी से ये सब शिक्षा मिली, नहीं? ये सब परंपरा की बातें, उसी को उन्होंने परंपरा की धारा से व्यास जी को ये सब शिक्षाएं दी। कब शिक्षा दी, मंत्र के रूप में नहीं, शिक्षा गुरु के रूप में, भागवत परंपरा में, इसी को कहते हैं भागवत परंपरा। उन्होंने मतलब जाओ भक्ति के द्वारा मन संजो करके उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। भक्ति योगे न मनसी सम्यक पणिहिते अमले अपश्यत पुरुष संपूर्ण मायांच जद अपाश्रया। अंत में जस्रावै श्रूयमाणायम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपवद्दे दे कुंसा शोक मोह भय। यहां तक तो अब इस परंपरा में जो चलती है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती, ठहरो एक मिनट, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के गुरु कौन है, हमारे प्रभुपाद जी ने उनको लिया नरोत्तम ठाकुर को, नरोत्तम ठाकुर जी से लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये दीक्षा नहीं, क्या चीज, भागवत। जितना भक्ति राज्य का जो कुछ है, शिक्षा इत्यादि सब कुछ उनसे उन्होंने ग्रहण किया, और उनकी दीक्षा किससे लिया था, गंगा चक्रवर्ती से। किंतु उन्होंने अपने गुरु के रूप में किसकी वंदना की है, नरोत्तम ठाकुर को उन्होंने वंदना की है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है, ये नरोत्तम ठाकुर जी भी कहते हैं रूप गोस्वामी को गुरु मान करके ये कब नरोत्तम हमारे गुरु लोकनाथ जी आएंगे और हमको गुरु गोस्वामी के पाद पद्मों में समर्पण कर देंगे, ये सब भागवत परंपरा है। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु कौन हैं, लोग विपिन बिहारी गोस्वामी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने किसको लिया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को, उनको भागवत परंपरा में लिया। उनकी जितनी भजन की शिक्षाएं थी, गोपी भाव से भजन करना इत्यादि, जो हमारे महाप्रभु का मनोभीष्ट है, इसको उन्होंने किया, इसलिए अपने गुरु के रूप में उनकी वंदना की है। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के कौन हुए शिष्य भागवत परंपरा में, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, दीक्षा शिष्य नहीं, किंतु दीक्षा शिष्य भी हो सकते हैं, किंतु भागवत परंपरा में इसको आना पड़ेगा, उनसे रागानुगीय जो भजन शिक्षा मार्ग है इसको ग्रहण करना, ये असल चीज है, इसलिए उन्होंने उसको ग्रहण किया। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हुए भक्ति विनोद ठाकुर के, और गौर किशोर दास महाराज के शिष्य कौन, शिक्षा दीक्षा भजन राज्य जो कुछ था सब इसके एकमात्र जितने भी भक्ति विनोद ठाकुर भी हैं, किंतु उन्होंने गौर किशोर दास महाराज को माना। ये भागवत परंपरा हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। यदि भागवत परंपरा को छोड़ करके और यदि केवल दीक्षा गुरु लेते हैं तो बहुत गड़बड़ता था, प्रभुपाद का विरोध करना हो जाएगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों को अभिन्न मान करके उनकी पूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए भागवत परंपरा का अनुग्रहण करेंगे, यही हमारे गुरु जी का आज के दिन में ये वैशिष्ट है। अब मैं बतलाता हूँ अंत में ये बातें, रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु कौन हैं, यदुनंदन आचार्य। जब गुलाब बिलाप पुष्पांजलि का जब उल्लेख करते हैं, जब मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण में अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम किसको कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम, यदुनंदन जी का भी उन्होंने प्रणाम किया है, किंतु पीछे किया, क्योंकि जिससे परमार्थ राज्य अधिक सीमा में मिलता है वही यथार्थ गुरु है। उन्होंने उनको बतलाया, रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम मंत्र दिया, उनका प्रणाम मंत्र क्या, सिरूप मंजरी प्रथिता पुरेस्मिन पुंसः परस्सन पश्यसि इति बिंबाधरे खतामनागत भत्रिकाया यत्ते बधाई कुमुत सुंग पंगवेन। अपने गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं, कैसे, वो जैसे अधिकारी हैं, उनके गुरुजी जैसे अधिकारी हैं, उसी अधिकार में उनकी वंदना कर रहे हैं, साधारण लौकिक रूप में नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं, अरे रूपमंजरी, आप तो ब्रज में प्रसिद्ध हैं कि आप पतिव्रता हैं, किंतु आपके पति बाहर में गए, आपको मानो किसी ये आपके यहाँ जो चिन्ह देखे जा रहे हैं ये कहाँ से आया, ओहो ये मालूम होता किसी श्यामल तोते ने आपको यह चिन्ह किया। इस तरह से प्रणाम करते हैं, उनके गुरु जी भी इस प्रणाम मंत्र को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद किया रूप गोस्वामी ने। तो ये भागवत परंपरा की चीज़ें हैं, और ये यथार्थ में गुरु जी के विचारों को आचारों को दूसरों के समीप दे करके और उनको उसी रूप में कृष्ण को देना, यही यथार्थ गुरु जी का मनोभीष्ट है। पैर सेवा भी ठीक है, उनको भोजन बनाना, उनके कपड़े भी साफ करना, ये भी गुरु सेवा ही है, उनके लिए और सेवाएं सब ठीक है। अरे महाराज जी आ रहे हैं, उनको एक चेयर लाओ, आने तो हम लोग यहीं पर नीचे नीचे बैठने के लिए, हाँ हाँ हमको भी नीचे एक पीछा दो, हाँ सुन, अरे नहीं हाँ, तो मनोभीष्ट क्या है गुरु का, गुरु का एकमात्र अभीष्ट को भी दो, उसको भी, इसको भी दो। तो कृष्ण की सेवा, राधा जी की सेवा, जुगल सेवा, साधक के हृदय में, अपने शिष्यों के हृदय में भरकर और अपने हृदय में लेकर उनके मनोभीष्ट का यदि विश्व में प्रचार कर सके, एक आदमी को भी यदि, एक भी साधक के हृदय में यदि राधा कृष्ण जुगल किशोर की सेवा की सर्वोत्तम भावना यदि किसी को दे सकें, ये गुरु का मनोभीष्ट है, और कोई सेवा नहीं। और सेवा में तारतम्य है, साधारण सेवाएं हैं, जैसे रूप गोस्वामी का मनोभीष्ट क्या, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था, अनपि चरिं चिरात करणी आवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसांश भक्ति श्री उन्नत उज्ज्वल रस स्वयं आस्वादन करना और उसी के माध्यम से राधा कृष्ण के उत्तम उन्नत उज्ज्वल रस का जो एक भाग है उसको जगत में प्रचार करना। अर्थात सीधे शब्द शब्द में गोपी भाव से कृष्ण राधा कृष्ण का भजन करना यही सबसे अधिक मनोभीष्ट है उनका। चैतन्य महाप्रभु के मन भोष्ट को रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि भक्ति गोस्वामी सिंधु विदग्ध और ललित माधव इत्यादि में उसको पूर्ण किया और जगत में सर्वत्र प्रचार किया। उनके मन के भावों को समझ करके रथ यात्रा के समय में उनके मन के भाव को जगत में प्रकाशित किया। यदि रूप गोस्वामी नहीं रहते तो नहीं। रूप गोस्वामी के मनोभीष्ट को कौन पूर्ण किया? जीव गोस्वामी दास गोस्वामी ने, पीछे से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि, उनके पीछे से नरोत्तम श्यामानंद प्रभु और श्रीमाचार्य, उनके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके बाद में बलदेव विद्याभूषण जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी के रूप में, और उनकी सेवा को मनोभीष्ट को कौन किया? श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का, और उनके बाद में धाराओं में हम लोगों के गुरुपाद पद्म सब प्रभुपाद के बहुत से सब शिष्य थे उनकी ये सब मनोभीष्ट को पूर्ण किया। इसलिए यह उन्नत उज्ज्वल रस का यदि एक भी साधक के हृदय को उन्नत बना करके उसको यदि उसके अंदर में स्फूर्ति प्राप्त कर दे, इससे बढ़ करके और कोई सेवा नहीं हो सकती। अपने गुरु के इस मनोभीष्ट को जिसने पूर्ण किया है यथार्थ में वही सचमुच में यथार्थ में उन्नतम वो शिष्य है। और नहीं तो वैदिक भक्ति भी प्रचार कर रहे हैं ये भी ठीक है अपने स्थान पर, और जो कार्य कर जो मंदिर बना रहे हैं ये भी कार्य है। कुछ लोग अपने तथाकथित गुरु के लिए आदेश को पालन करने के लिए गुरु भाइयों को पिठवा भी देते हैं, कहे उसका सिर उतार लाओ ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, हमारे सामने उनको बदनाम कर दो अपमानित कर दो। शिष्य कहता जी गुरु जी ने कहा जी इनको मारो, ये सब सेवाएं नहीं है। सच्चा गुरु ऐसा नहीं कर सकता है, उसको किसी के प्रति द्वेष नहीं होती। आजकल ये सब चीजें फैल रही हैं जो गुरु की सेवा मनोभीष्ट सेवा क्या है, उनका जो विरोधी है उनका सिर ले आओ, ये सब सेवा नहीं है। गुरु जी का तो कोई विश्व में विरोधी ही नहीं, भगवान का सेवा का कौन विरोध करना। इसलिए तथा गुरु लोग ऐसा कार्य करते हैं, आप लोग ऐसे गुरु से जरा सावधान रहेंगे। गुरु भी कभी नहीं कहता सिखलाता जब वैष्णव का द्रोहाचरण करो। गुरु वही है जो ये कहता है जो वैष्णव की सेवा ही गुरु की सेवा है, वैष्णव की सेवा ही हमारी सेवा है। ऐसा इन चीजों को समझ करके हम लोग अग्रसर होंगे, अन्यथा हम लोग भक्ति रस से वंचित हो जाएंगे। यह है गुरु परंपरा धारा में यह भागवत एक परंपरा और एक शिष्य परंपरा वाले इन गुढ़ विचारों को समझ नहीं पाते। भागवत परंपरा वाले लोग इसको समझेंगे। यदि केवल मात्र दीक्षा गुरु से ही लिया हमने मंत्र और वही हम सर्वस्व मान लिया और किसी वैष्णव को सम्मान नहीं किया है, तो प्रभुपाद जी को भागवत परंपरा कहने की जरूरत क्या थी? इसी चीज को समझाना था, वैष्णव मात्र का ही जो सेवा है वही गुरु की यथार्थ सेवा है। इसलिए गुरु में और वैष्णव में यह विरोध नहीं हो, दीक्षा और शिक्षा गुरु लड़ते ही नहीं है, तो दोनों एक हैं, कृष्ण के सेवा के लिए अर्पित किए हैं, वहां पर विरोध कैसा है? इसलिए इन चीजों को समझ करके अच्छी तरह से अपने गुरु जी की अपने शिक्षा गुरु की वैष्णवों की सेवा करते हुए हम गुरु परंपरा को लेते हुए हम अपने गुरु जी की सेवा कर सके, उनके मनोभीष्ट को प्रचार कर सके, यही हमारा निवेदन है और यही हमारे गुरु परंपरा की धारा है। आप लोग इसमें स्नान करके अभिषिक्त होकर के गुरु सेवा में संलग्न हो, हम अपने गुरु वर्गों से यही आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बंझा कल्पतरुभ्यश्च कृपात्। बहुत विद्वान आदमी सिद्धांतविद हमारे भक्ति विज्ञान भारती महाराज, सचमुच में भक्ति के ये विज्ञान है खजाना है, आज यहाँ पर आए हैं। पूज्यपाद परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शेषन भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के अत्यंत कृपा पात्र और आश्रित है। आप दो चार समय तो हो गया है इसलिए थोड़े से संक्षेप में ये कुछ कहेंगे और इसके बाद में हम लोग उन्होंने नित्य वेश नटवर का वेश सफेद वस्त्रों में ही धारण किया है, आज कहीं की तैयारी हो रही है। अभी बहुत से अच्छे अच्छे भक्त हैं, किंतु हम लोग गुरु जी के साथ में काफी दिन रहे। बचपन में ही गुरु जी के चरण में रहने का सौभाग्य हुआ और अंत तक रहा, इसलिए कुछ बातें स्मरण आती हैं। इसलिए आज सब लोग एकत्र हैं, फिर चले जाएंगे तो फिर आप लोग शायद न सुन सकेंगे, इसलिए दो एक बातें जो हमारे मन में स्मरण आती जाएंगी हम बोलते जाएंगे। सरल सरल सहज भाषा, कोई दार्शनिक विचार इत्यादि नहीं, सरल सहज भाषा। क्रमानुसार नहीं बोलूंगा, जखन जाकर जहां मोने पड़े तो अपन कहां की थी।
मन कांदे प्राण कांदे कांदे दुखिया की,
तो जब जो याद आ जाएगी दो एक बातें हम बतलाएंगे उनके संबंध में। करीब करीब 6:30 बजे तो हम लोगों का ये भाषण समाप्ति हो जाता है प्रवचन, किंतु फिर भी आध घंटा आपका समय देंगे, उसमें जो कुछ हो जाएगा फिर दूसरे दिन हम लोग उसका वर्णन करेंगे। अभी कुछ जो बात हमारे दामोदर महाराज जी भी आए हुए हैं, वो बंगला बोलते हैं और थके हुए हैं, इसलिए आज नहीं बोल सकेंगे, कल वो कुछ बोल सकेंगे। वो भी गुरु महाराज साथ में बहुत दिनों तक थे और भी इसमें अच्छे अच्छे लोग पहुँचता है। सबसे पहले ये बतलाता हूँ, गुरु महाराज जी एक बार यहाँ आए थे, वो घर जो है भजन कुटी की स्मृति वहीं पर घर था, उसी में रहते थे और यहीं पर आले में ठाकुर जी रहते थे। आला समझते हैं ना, आले में रहते। अभी मंदिर तंदिर कुछ नहीं बना था, यहाँ पर दो कमरे थे, तो उधर वाले कमरे में मैं रहता और इधर में आले पर और ठाकुर जी रहते थे।
जैसे यहाँ चढ़ना पड़ते आले में, वैसे पहले
हाँ वो सामने उस दोनों को घरों का एक करके तब मंदिर बनाया। इधर में गुरु जी रहते थे, वो भी दो घर थे छोटे छोटे, उधर से जाना होता। तो जिस समय में यहाँ पर विग्रह प्रतिष्ठित हुआ तो इसी कमरे में